वो आंखें जमजम में डुबो लूं तो फजीलत लिखूं, आंखें जमजम में डुबो लूं तो फजीलत लिखूं। इमाम हसन अस्करी साहब की शान में पढ़ रही हूँ, दिल को कौसर में भिगो लूं तो फजीलत लिखूं, आंखें जमजम में डुबो लूं तो फजीलत लिखूं, शहद अल्फाज में गोलूं तो फजीलत लिखूं, मैं भी कुरान का बोलूं तो फजीलत लिखूं। जब ये मुमकिन ही नहीं, जब ये मुमकिन ही नहीं तो फिर क्या लिखूं, यही बेहतर है फकत हसन अस्करी लिखूं सलवार। क्योंकि आज हमारे 11वें इमाम की शहादत का दिन है, हम उनका जिक्र करेंगे उनकी शहादत, और क्योंकि आज ही का दिन है कि ये लोग मदीना पहुंचे, लिहाजा वो भी हम जिक्र करेंगे। और हमारे पास वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, कभी आप लोग मुझे इतनी ज्यादा राह नहीं दिखाते, मैं तकरीबन 40 मिनट जैसा हो गया मुझे आए, मतलब आपकी दूसरी भी मजलिस थी अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा कबूल करे। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि खुदा वंदे आलम ने सैयदों में पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, खुदा इन जबान में इतनी कुव्वत दे, खुदा इन जबान में असर दे कि मैं कुछ अच्छा पढ़ सकूँ और हम सब मिल के अमल पैरा हो, क्योंकि ऐसा इनका कोई फायदा नहीं जिसमें हम अमल ना करें। खुदा हमें सबको अमल की तौफीक दे, इमाम जमाना की खुसूसी नजर इस बज्म पे रहे और हम ज्यादा से ज्यादा फायदा इस मजलिस से हासिल कर सके। अजीजा निगरानी, देखिए अल्लाह का कितना लुत्फ है, वो मैं आपको जल्दी बता दूं कि कभी कभी हम लोग छोटी छोटी बीमारी में परेशान हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे फोड़ा फुंसी हो गया, मिसाल के तौर पे हमें जुकाम हो गया, तो हम लोग ऐसा क्या बीमारी मुझे आ गई ऐसा हम सोचते हैं। मगर अजीजा निगरानी, आपको सच में दिल से शुक्रिया अदा करने को दिल चाहेगा, आप आगे आगे आ जाओ, उनके बाद माइक भी बराबर हम लगते हैं। तो अजीजा ने ग्रामी, थोड़ा एक वाकया है जो आयतुल्ला शहीद मेहराब, आयतुल्ला दस के सिराजी, क्योंकि उसे नमाज के मेहराब में शहीद कर दिया गया, लिहाजा उनको हम कहते हैं शहीद मेहराब, मेहराब में शहीद होने वाले। आयतुल्ला दस के सिराजी ने सूरे हदीद की तफसीर लिखी, तफसीर में इस बात को लिखा कि जनाब सलमान मोहम्मदी सर पे पट्टी बांध के हमारे मौला के पास हाजिर हुए। और नेचुरली अजीजो, इमाम एक छोटे बच्चे से ममता रखने वाली माँ से ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं, एक बराबर के भाई के बराबर हैं। तो एक मरतबा जनाब सलमान मोहम्मदी का ये हाल देखा कि सर पे पट्टी बांधी है, सर दर्द कर रहा है, जुकाम हो गया है, तो उनसे कहा कि एक्चुअल में अल्लाह सुभान व तआला 6 वेन है हमारी खास, उस वेन को हरकत देता है, इस वेन को जब हरकत देता है तो एक बीमारी होती है, ये बीमारी क्यों होती है, एक बड़ी बीमारी से बचाने के लिए एक छोटी बीमारी होती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी के पागल हो जाने का डर हो, आप समझ सकते हैं अगर खुदा न खास्ता कोई पागल हो जाए तो कि उसकी खुद की तो जिंदगी सोचे, उसके घर वालों की जिंदगी भी आजीन हो जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा, एक पागल के साथ घर में रहना कितना दुश्वार हो जाएगा। ऐसे कोई पागल खाने में छोड़ के नहीं आते अपनों को, मगर अगर किसी के पागल होने का खतरा होता है, खुदावंद ने मुताल उसकी एक अजीजा निगरामी वेन को हरकत देता है, उस वेन की हरकत की वजह से उसको जुकाम होता है। हमारे जहन की जो रुतबत होती है, जो गंदा पानी होता है, जो गंदा कचरा होता है, वो निकल जाता है, यानी जुकाम हमारे जहन को कुवत देता है, पागलपन से बच जाता है इंसान। हम क्या करते हैं, फरियाद करते हैं, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, जल्दी जल्दी उसकी दवाइयां करने लगते हैं, उसको सुखाने के लिए एंटीबायोटिक खाने लगते हैं, मगर एक्चुअल में जो निकल रहा है कचरा बदन से, वो एक अच्छी चीज है कि हम पागलपन से बच गए। इसी तरह अजीजा निगरानी, अगर किसी के अंधे होने का खतरा होता है तो अल्लाह एक वेन को हरकत देता है, हमारी एक नस को हरकत देता है। और अजीजा निगरानी, किसी के अंधे होने का खतरा होता है तो उस वेन को हरकत देता है जिसकी वजह से आंखें दुखने लगती है, आंखों से गंदा पानी वगैरह निकल जाता है और अंधापन से बच जाता है। इसी तरह किसी के अजीजा निगरामी कोढ़ कितनी कैसी खतरनाक बीमारी है, खुदा किसी को ना दे कोढ़ बीमारी। हाँ, किसी को देखो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा ने किसी भी बीमार को देखो मैं रसूल की हदीस से आप कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुने ना इस तरह शुक्र करे। फाके मत मारो कि हमको ये बीमारी नहीं हुई, भाई हमारा कुछ भी नहीं है, अभी चलते फिरते अभी निगरानी सांस लेने के लिए मोहताज है खुदा के, हमको तकब्बुर करने की खुद पसंदी करने की कोई जरूरत, मगर अल्लाह कितना मेहरबान अपने बंदे पे कि अगर किसी को कोर होने की अजीजा निगरामी इम्कान होता है कि उसको कोर हो जाएगा तो खुदा एक वेन को हरकत देता है, उस वेन के हरकत होने से फोड़े फुंसी निकल आते हैं, और क्योंकि उसे अजीजा निगरामी फोड़े फुंसी निकल उस बीमारी से बच जाता है। और ये खाली कोर नहीं, जुजाम, जुजाम भी एक अलग बीमारी है, दो बीमारियां कोर दोनों के होने का खतरा होता है, तो खुदा एक वेन को हरकत देता है हमारी, उस वेन की हरकत की वजह से क्या होता है सॉरी नाक में वो जो मैंने कहा ना आपको वो कोर नहीं बर्स था, बर्स और हम लोग एक ही बोलते हैं बर्स को और कोर को, मगर बर्स और कोर एक नहीं है। अगर आप जाएंगे यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको मिलेगा वीटीलिगो, गुजराती में उसको पांडो रोग कहते हैं, एकदम पेचिस पेचिस हो जाते हैं, वो भी ऐसे दागीज होते हैं सफेद, मगर वो अलग टाइप का होता है। अगर वो होने वाला होता है तो अल्लाह एक वेन को हरकत देता है जिसकी वजह से फोड़े फुंसी निकल जाते हैं, और अगर कोर होने वाला है, जुजाम होने वाला है तो नाक के अंदर कड़क बाल होते हैं, इसलिए कहते हैं कि नाक के बाल को काटो, खींच के मत निकालो, मना किया है। और अगर किसी को पाइल्स होने का खतरा होता है, बहुत सख्त बीमारी है बवासीर, अजीजों पाइल्स क्या कहते हैं आप मसा वगैरह, तो अगर ऐसी बीमारी होने का खतरा हो तो एड़ियां फट जाती है, एड़ियों की फटने की वजह से वहां से बदन की जो गर्मी होती है, जो भाप होती है वो निकल जाती है, और इंसान ये बड़ी बीमारी से बच जाता है। इसी तरह अगर किसी का टीवी होने का इम्कान होता है, अल्लाह एक वेन को हरकत देता है, और अजीजा निगरामी इस वेन के हरकत देने की वजह से उसको खांसी आने लगती है, और ये खांसी सीने के कफ को बाहर निकाल देती है, और टीवी से इंसान बच जाता है। यानी छोटी छोटी बीमारी बड़े बड़ी बीमारियों से यानी हमको तो शुक्र अदा करना चाहिए ना, हाँ हम अपनी तबीयत का ख्याल रखे अलग बात है ना, वरना अगर ये कफ हो रहा है तो ये कफ हमारे 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 जहन में जो होता है अजीजा निगरामी जो रुतुबत जो हमें पागल तक कर सकती है, हमें दीवाना बना सकती है, वो सारी रुतुबत वो सारी खराबी को निकाल देता है कफ। यानी कफ एक्चुअल में सर्दी हो जाए तो अजीजा निगरामी खास करके एंटीबायोटिक लेने में बहुत जल्दी मत करो, कम से कम 3 दिन तो रखो, खुदा करे हम समझ सके। तो मैंने आपको 6 चीजें बताई और अल्हम्दुलिल्लाह 6 हो गई है, परवरदिगार हम सबको तौफीक दे, इसलिए बताई कि देखें हमारा खुदा कितना मेहरबान है। और अजीजा निगरामी एक और चीज मुझे आपको बतानी है, वो है कि खुदा राजिक है। कैसा राजिक है? एक घर था, वो घर जब बना तो अजीजा निगरामी इसकी ईटों पे ईट जब रखी गई, जब सीमेंट से उसे प्लास्टर कर दिया, रंग रोगन हो गया, 10 साल के बाद घर वालों को ऐसा महसूस होने लगा कि अब थोड़ा रिनोवेशन की जरूरत है, और रिनोवेशन में उन लोगों ने थोड़ी दीवार तोड़ना चाहिए, थोड़ा बड़ा करना होगा जो भी। तो जब दीवार तोड़ी तो ईट के अंदर एक छिपकली फंसी हुई मिली। अब देखा ये 10 साल के बाद जब ये प्लास्टर निकाला तो अंदर थी, मतलब अजीजा निगरामी 10 साल से वो अंदर ही थी छिपकली और फंसी हुई थी दो ईटों के बीच, वो निकल नहीं सकती थी। अब 10 साल यानी कितने दिन हुए? 3650 दिन तक वो वहां खाना पीना कौन दे? ये लोग जो काम कर रहे थे उन लोग ये ताज्जुब में थे कि इतने दिन तक बगैर खाए बगैर पानी पिए तो नहीं जिंदा रह सकती, तो उसको मिला क्या है? इतने में लोग ने देखा दूसरी छिपकली आई, वहां खाना मुंह में लेकर उसके मुंह में, क्योंकि वो खुद तो निकल नहीं सकती थी। अजीजा निगरामी जो छोटा सा सुराख था वहां से ये खाना पहुंचा देती थी दूसरी छिपकली, कौन रिस्क पहुंचा रहा है? एक चीज याद रखो तो आपको बहुत सुकून रहेगा, अगर खुदा कोई एक रास्ता बंद करता है ना, एक दरवाजा बंद करता है रोजी का, उससे बेहतर दरवाजा न खोल दे वहां तक ये दरवाजा बंद, और हलाल से कमाना है, हराम हराम की कमाई कोई काम की बरकत नहीं होती इस चीज़ों। और एक बीमारी आए तो सारा रिस्क चला जाता है हॉस्पिटलों में वगैरह में। हमेशा याद रखे कि अल्लाह राजिक है, मुनी में हकीकी खुदा है, मांगना है तो भी खुदा ही से मांगो, वो सारे प्रॉब्लम आपको दूर कर सकता है। और अगर अजीजों आपको मांगना है तो खुदा ने खुद पसंद किया है कि मेरे अहले बैत का वास्ता देकर मुझसे मांगो, मैं कबूल करूंगा। जब तक पंजीकरण का वास्ता नहीं दिया था जनाब आदम की तौबा कबूल नहीं हुई थी। और अजीजों हमारे रसूल बता के गए हैं 12 इमाम को कि मेरे बाद 12 इमाम होंगे, सबके सब कुरैश से होंगे, और एक एक नाम उनके बाबा के नाम के साथ बता के गए कि पहले अली हो गए, फिर उनके फर्जन हसन हो गए, फिर उनके भाई हुसैन अली हुसैन बिन अली हो गए, फिर अली इब्न हुसैन होंगे, इमाम हुसैन की नस्ल से 9 हो गए, सब सब बता के गए। और एक के बाद एक इमाम भी दूसरे इमाम को पहचान ना दे, मगर हमारे अजीजा ने गिरामी 10वें इमाम ने हमारे 11वें इमाम को कितने महीने में सबको पहचानवा दिया, सिर्फ 4 महीने में। 11वें इमाम की 4 महीने की उम्र है, सब लोगों को जमा किया और 10वें इमाम ने सबको तारुफ कराया। क्यों? मालूम था मोतमीद जो अब्बासी खलीफा है, जो दुश्मन है इमाम का, वो फिर ऐसा मौका नहीं देगा कि सबको जो चाहने वाले उनको बताया जाए कि मेरे बाद तुम्हारा इमाम इमाम हसन है अस्करी अलिस्तान है। क्यों उनको अस्करी कहा गया? नाम तो हसन है ना, हमारे 2 इमाम का नाम हसन है, है ना? 4 इमाम का नाम अली है, फिर दूसरे मोहम्मद है, कौन कौन? मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। तो अजीजा ने गिरामी मेरा आपसे सवाल, इनको अस्करी क्यों कहा जाता? अस्करी का मीनिंग होता है लश्करी छावनी। फिर मैं कहूँ ना कि हसन अस्करी तो मुझे रोना आना चाहिए, किस तरह इमाम 10वें इमाम को बुला के रखा था, और 10वें इमाम जब गए तो 11वें इमाम साथ में थे। मैं बचपन का एक छोटा सा वाक्य बहुत जरूरी समझती हूँ आपको बताना, मगर अजीजा निगरामी 10वें इमाम गए तो 11वें इमाम बहुत छोटे तो उनको साथ लेके गए थे, और वहां पर या तो कैदखाने में रहे या तो नजरबंदी में रहे। ये लोग क्यों नहीं चाहते थे कि 10वें इमाम घर पे रहे? क्योंकि उनको मालूम था रसूल खुदा की हदीस,
नारे हैदरी हैदरी नारे
सलवार। कोई बाहर के कमरे में बैठा है और नहीं सुनाई देता तो यहाँ पे जगह है ना। तो अजीजा निगरानी क्यों अस्करी कहा गया? क्योंकि 10वें इमाम तो मुला के कोई अच्छी जगह पे नहीं रखा गया उनको। अजीजो लश्करी अस्करी बोलते हैं लश्करी छावनी को, लश्करी छावनी में रखा गया, लश्कर के बीच रखा गया, यानी कितना जापता है अजीजा निगरानी। सुकून से चैन से सांस नहीं लेने दी है 10वें इमाम को भी। क्यों? क्योंकि हमारे रसूल फरमा के गए थे कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होगा, और 12वां जो आएगा वो जुल्म जोर का खात्मा करेगा और अदल इंसाफ कायम करो। उसको मालूम थी कि हम जालिम खलीफा हैं, हमारी खिलाफत को 12वां हादी आके इराजा चाहते नहीं थे कि 10वें इमाम के 10वें इमाम अलैहिस्सलाम या 11वें इमाम अलैहिस्सलाम आजाद रहे, पर चाहते नहीं थे कि 11वें इमाम के वहां कोई औलाद हो। तो कैसे औलाद हुई? मुसलसल जपता था अजीजा ने, घर नहीं जाने देते थे 11वें इमाम को। ऐसा कौन सा वाक्य पेश आया कि 11वें इमाम घर गए हैं और इमाम जमानत की विलादत हुई है? और नजीज खातून जो आपकी वाइफ है 11वें इमाम की, कैसे दिन काटे होगी इस बीबी ने? हम कभी सोचते हैं कि कितनी मुश्किलों के बाद हमारे पास ये पहुंचा है। मुझे बहुत जल्दी जोड़ा जाना पड़ेगा कि बहुत कुछ चीजें मुझे 11वें इमाम की आपको बताना है। एक बचपन का वाक्य हम ले, जब सामरा में आए थे तो एक मरतबा की बात थी कि बहलुल दाना देखते हैं हमारे 11वें इमाम को, पहचानते नहीं थे, तो एक मरतबा देखा कि सब बच्चे खेल रहे हैं और इमाम नहीं खेल रहे हैं। क्या तुमको खिलौने चाहिए? क्या हम खेलने के लिए पैदा हुए हैं? तो क्यों पैदा हुए हैं? अब बहलुल दाना एक मुश्तहिद जितना इल्म रखने वाले आलिम है, वो तो उन्होंने अजीजा ने गिरामी इस्लाम के खातिर दीवाना होना पसंद किया है। अभी मैं वहां नहीं जाती, मगर बहलोल दाना पूछ रहे तो फिर क्यों पैदा किया था? इल्म हासिल करके इबादत करने के लिए खुदा ने पैदा किया। तो मजीद नसीहत करो। फिर अजीजाने गिरामी इतनी नसीहत की बचपने का जमाना है बहलोल दाना को, और जब दुनिया की मजिम्मत की वगैरह सब बातें आई तो हमारे ग्यारहवें इमाम बचपने के जमाने में इतना रोए कि बेहोश हो गए। और फिर जब होश में आए हैं तो एक मरतबा बहलोल दाना ने कहा कि आप क्यों रोते हैं, आप तो छोटे हैं, आप तो भी बालिग भी नहीं हुए हैं। कहा कि मेरी माँ जब आग सिल जाती है तो छोटी लकड़ियों को पहले डालती है फिर बड़ी लकड़ी को डालती है। तो क्या इसका मतलब मुझे, मैं जब छोटी थी तब से मैं वाक्या सुनती हूँ। और बहलोल दाना ने भी ये सवाल किया कि तो क्या फिर छोटे बच्चों को डाल देंगे? तो नहीं है ना, बच्चे तो जन्नत में जाएंगे और हमारा नामे अमल लिखना हम बालिग होते तब शुरू होता है। मैं 9 साल की हो गई, अगर 9 साल की हुई तब से मेरा लिखा जाएगा कि मैंने पर्दा किया कि नहीं, मेरी नमाज कज़ा हुई कि नहीं, उसके पहले का नहीं लिखा जाएगा। उसके पहले अगर मैंने पर्दा किया, उसके पहले मैंने नमाज, तब बच्चे को तो सवाब मिलेगा मगर माँ बाप को भी मिलेगा, दादा दादी जो भी घर में उनकी परवरिश कर रहा है सबको मिलेगा इंशाल्लाह। मगर अगर बच्चे ने गुनाह किया तो गुनाह लिखा नहीं जाएगा। फिर क्यों इमाम इतना रो रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि पहले छोटी लकड़ियां डालती है मेरी माँ फिर बड़ी लकड़ियां डालती है? इमाम हमें देखिए, मैं आपको ये शायद न समझा सकती, थोड़ा हार्ड है समझना, मगर सलामत रहे हमारे उलमा को, उन्होंने हमको ये समझाया कि बुराई को जड़ से पकड़ना है, बुराई को जड़ से पकड़ना है, पहले से पकड़ना है। भले नामे अमल खुला नहीं रहता मगर अगर छोटा बच्चा झूठ बोल रहा है तो से बताना है कि बेटा झूठ इस्लाम में नहीं है, झूठ गुनाह है कबीरा है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं, आपको फौरन समझ में आ जाएंगी बात कि बचपन से बुराई जड़ से पकड़ लेना है। मिसाल के तौर पर अजीजा ने गिरामी, एक बच्चा है स्कूल में जा रहा है, अब वो बच्चा बड़ा हो गया और फिर अजीजा ने गिरामी उसने एक मर्डर कर डाला, किसी को कत्ल कर डाला। अब ऐसी हस्ती का मर्डर किया था कि पुलिस उसके बाकायदा पीछे पड़ गए, उसको पकड़ लिया, उसके केस चला, छूट भी नहीं सका और अजीजा निगरामी फांसी की सजा हुई। आखिरी आखिरी पूछते ना कि तेरी ख्वाहिश क्यों हो तो बता, तो ख्वाहिश पूछी गई, जब ख्वाहिश पूछी गई अजीजा निगरामी तो क्या कहा, मेरी माँ से मिलना है, माँ को बुलाया। माई इंसान क्या करेगा, माफी मांगेगा, सलाम करेगा, हाथों को चूमेगा। उसने क्या किया, उसने अजीजा ने गिरामी अपनी माँ को बाइट कर लिया, माँ को काटा। अब माँ भी कहती है कि बेटा तू क्या करा है, वक्त आखिरी मुलाकात है, अब तुझे सूली पे चढ़ना है। अब माँ तेरी वजह से मैं जा रहा हूँ सूली पे, मेरी वजह से कहा, जब मैं स्कूल में रबड़ चुरा के लाता था, पेंसिल चुरा के लाता था, तब तूने मुझे रोका नहीं, टोका नहीं, पूछा भी नहीं कि बेटा ये कहाँ से आया है, तो अपने पास नहीं था। मैं चोरी करता रहा यहाँ तक कि मुझे बड़ी बड़ी चोरियाँ की आदत हो गई और फिर मैंने एक बड़ी चोरी करने के लिए एक शख्स को कत्ल कर डाला। आज मुझे सूली पर, अगर तूने मेरे रबर और पेंसिल जब मैं चोरी करके लाता था तब पूछा होता और बताया होता कि चोरी गलत है, आज मैं सूली पे। यानी बुराई को कहाँ से पकड़ना है, जड़ से पकड़ना। ये नहीं कि बच्चे को डाल देंगे, पूरा बच्चे मासूम होते हैं। हम माँ बाप अजीजा निगरामी बच्चों की अगर सही से सही परवरिश करना है तो मुझे अच्छा बन जाना है, मैं नमाजी बन जाऊँ, मैं पर्देदार बन। अगर मैं खुद ही पर्दा नहीं करते मेरी बच्ची कहाँ से पर्देदार बन? और अगर मेरी बच्ची बेपर्दगी की वजह से अजीजा निगरामी जहन्नम में जाएंगी तो यही कहेंगे कि मेरे माँ बाप को ले जाओ, अगर वो मुझे सिखाते तो आज मैं दूसरे में ना चलती है। और खुदा भी उनका मानेगा, ये तो अलग रिवायत है। हम आगे बढ़ते, अजीजा निगरामी हमारे इमाम कैद खाने में थे। देखिए आज़ादी अलग चीज़ होती कैद खाना, मगर इमाम ने कैसे दिन फैलाया था फिर? एक तो इमाम ने एक तफसीर लिखी, इमाम की हदीसें मौजूद है, और अजीजा निगरामी हमारे इमाम ने किस तरह दिन फैलाया, मैं आपको बताऊँ। अब जिस कैद खाने में इमाम को रखा जाता था ना, अगर एक इंसान मर जाता है तो उसको पैर फैला के सुलाया जाता है। इतनी तो कब्र हम खोदते ना कि इंसान सही से सो सके कब्र के अंदर। मतलब इमाम को ऐसे के खाने में रखा जहाँ पैर फैला के सोने, ऐसे के खाने में भी इमाम ने अखलाक के अजीम नमूने, एक शख्स था बहुत ज्यादा इमाम को टॉर्चर करता था, इमाम को सताता था, और मोतमीद मलून ने उसको इसीलिए रखा था कि इमाम को सताओ, जितना सता सकते हो सताओ। अजीजा निगरामी, एक मरतबा की बात है, जासूस सीआईडी की तरह रहते थे, कोई मिलने आने वाले को, कोई पहचान वाले को, कोई मोहब्बत करने वाले को मिलने। अब एक शख्स था उसे इमाम से बड़ी मोहब्बत थी, जानता था कि इमाम को रोजाना क्या मिलता है, सिर्फ दो रोटी के टुकड़े और पानी, पूरा दिन सोचे 24 घंटे में। अब वो सोचता है कि मैं इमाम को अनार भेजूं, तो उस शख्स से कुछ भी एडजस्टमेंट करके उसको समझा पटा के किसी की लगभग लगा के 5 अनार भेजता है एक शख्स इमाम का चाहने वाला। अब जब वो अनार आए तो सीआईडी जो है, जो जासूस जैसा है, इस अनार को ललचाई नजर से देख रहा है। इमाम ने पहचान गए कि इसको ये खाने की ख्वाहिश है। हमारे इमाम कैसे हैं, हमारे रसूल को देखो, फते मक्का हुआ तो क्या कहा, आज बदले का दिन है? नहीं, आज रहमत का दिन है, आज माफी का दिन है, सबको माफ कर दिया। और इसका असर क्या हुआ, जोग दर जोग लोग मुसलमान बन गए, सबको माफ कर दिया। इतना परेशान किया था हमारे रसूल को, पत्थर मारे थे, दीवाना कहा था, इतना मदीने जाने के बाद भी चेन नहीं लेने दिया था, इतनी लड़ाइयां की थी, मगर जैसे फतेह मक्का हुआ हमारे रसूल ने सबको माफ कर दिया। अली अलैहिस्सलाम अजीजों जंगे सिफिन में माविया ने वो नहर जो थी वहां की जो पानी के दरिया था वो छीन लिया था। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अजीजा ने ग्रामी वो दरिया अपने कब्जे में वापिस कर लिया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, सबको पीने दो पानी। वो उनका रवैया था कि सबके लिए पानी बंद है, ये हमारा रवैया कि हम सबके लिए पानी खोल रहे हैं। चौथे इमाम ने अली अकबर के कातिल को गल्ला दिया है। इमाम हुसैन को मालूम है ये यजीद का लश्कर है, भूत की सरपरस्ती में सबको पानी पिलाया, मगर 3-3 बार जानवरों को खुद इमाम ने जाके पानी पिलाया। हाँ, अब्बास का पानी पिलाओ, एक एक को सैराब किया है वहां जहाँ पानी नहीं है। तो हमारा इस्लाम तो हमें ये सिखाता है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा सलूक है उसके साथ अच्छा। 11वीं इमाम क्या कर रहे हैं, देखो दीन फैल रहा है अखलाक के जरिए। 11वीं इमाम ने उसको एक अनार दे दिया, वो खा नहीं रहा था कि तेरा तो तेरी रगबत इस तरफ थी कि तू नहीं खा रहा है। इमाम जाने दो कोई बात कहने, तू बता कहा मेरे 5 औलाद है और हम कुछ भी खाते हम साथ में मिलके खाते हैं, मैं सोच रहा हूँ एक अनार में किस तरह सबको बांटूंगा। इमाम ने 5 अनार उसको दे दिए, कहा नहीं मौला रखिए आप अपने लिए भी रखिए, कहा नहीं ये ज्यादा अच्छा है कि तेरे बच्चे खाए। अब इतना इमाम का अकीदत मन बन गया, इमाम से इतनी मोहब्बत करने लगा कि मौतमीद तक पता चल गया। और मौतमीद ने उसको जब बुलाया और कहा कि तू क्यों इस तरह का, तुझे तो मैंने जासूस बना के सीआईडी बना के रखा है, तुझे टॉर्चर करने के लिए इमाम को सताने के लिए रखा है और तू इमाम का आशिक बन गया, इमाम से मोहब्बत करने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। तू कत्ल तो कर सकता है मगर ये मोहब्बत दिल से निकल नहीं, उसको कैद किए खाने में डाल दिया। अब दूसरा एक शख्स था अजीजा निगरामी, वो इससे कहता है कि अगर तू नहीं संभाल सकता, तू ये काम नहीं कर सकता तो मुझे दे दे। यहिया बिन हरमसे सब उसका नाम बराबर मुझे याद नहीं रहा, मगर वो शख्स बहुत तंगदिल था, सैयद को देखता था ना तो उसकी आंखों में खून उतर आता, न जाने कैसी दुश्मनी थी। घर लेके जाता है इमाम को, अब मैं घर में कैद रखूंगा। उसकी वाइफ कहते किसको लेके आया, बस तू तेरा काम कर, कहते क्या ये रसूल की औलाद से, कहा हाँ, देखो रसूल की औलाद में आलिम भी होते हैं, तो सोच समझ के उस पर टॉर्चर करना। मगर अजीजा निगरामी इसने एक भी नहीं सुनी, तो सोचा मैं कैसे सताऊंगा, आसान रास्ता यह है कि एक ही दिन में खेल ही खत्म हो जाए, ना मुझे अपने घर में रखना पड़े ना मुझे सताना पड़े, काम ही खत्म हो जाए। उसके घर में अजीजा निगरामी एक बड़ा सा पिंजरा था, पिंजरे के अंदर बड़ा रूम जितना कमरा, कमरे में जाली लगाई हुई थी और वहां पर जंगली जानवर रखे थे और जंगली जानवरों को खाना नहीं दिया था, वहां पे इमाम को रख दिया और खुद आके आराम से लेट गया। उसकी वाइफ को पता था कि ये वहां पे रखे आए, कहते कि जरा तो रहम करो, अब तो फाड़ खाए होंगे जानवरों ने पर हड्डियां बची होगी। सैयद है, रसूल की औलाद है, जरा दफन ही कर दो हड्डियों को। जाके देखा तो इमाम सजदे में थे और सारे के सारे जानवर वहां पर सजदे में थे। निगरानी देखे दीन कैसे फैल रहा है, कैसे लोगों के दिलों तक इमाम जा रहे हैं। अब इमाम अलैहिस्सलाम को इतना जो सताया था फिर थोड़ी छोड़ दिया, जानवरों ने छोड़ दिया, जंगली जानवरों ने काटा नहीं, जंगली जानवरों को मारो, जंगली जानवरों पर सैयदों का इमामों का खून हराम है, वो लोग वो तो जानते हैं। वो भी इमाम सजदे में गए तो जानवर भी सजदे में चले गए, मगर अजीजा ने ग्रामी इंसान को शऊर नहीं आ रहा, अब भी सता रहा है, इतने में इसका बच्चा बीमार हो गया। अब यहाँ भाग रहा है, वहां भाग रहा है, वो डॉक्टर वो तबीब, मगर उसको अच्छा आखिर डॉक्टर ने कह दिया इलाज नहीं, मरने के करीब आ गया बच्चा। अभी भी शऊर नहीं आ रहा है कि जो मेरे हिरासत में है, जो मेरे कैद में है, इमाम हसन ने अस्करी अल इस्लाम से कहूँ दुआ करे, अभी समझ नहीं आ रही। किसी और ने कहा कि तो इमाम को क्यों नहीं कहता है, तो मुझे शर्म आती है। मगर अब बच्चे की जब जिंदगी और हयात की बात थी, हयात और मौत की बात थी, तो इमाम के पास गया जाके माफी मांगी। मगर अजीजा निगरामी इमाम ने उसे बोलने तक नहीं दिया कि मेरा बच्चा बीमार है, इमाम ने डायरेक्ट कह दिया जाओ तुम्हारा बच्चा सेहत याब हो गया। अब आके देखा तो बच्चे पे तो सेहत के आसार नमदार हो गए, तो बच्चा बच गया, बच्चा सेहतमंद हो गया। मगर अब उसके दिल में इमाम की मोहब्बत कैसे एहसास कराए इमाम ने, एहसान करके एहसास कराए। हम कैसे एहसास कराते हैं, चीखा मार मार के हद तो ये हो जाती है, घर में भी हम सबको एहसान करके नहीं कराते। अगर शौहर से कोई गलती हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया घर में किसी के साथ, तो हम देखते हैं अच्छा अब जरूरत पड़ी आप आए, अब मौका होता है अजीजा निगरामी मोहब्बत का वाजिब किया है ये तो, परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक दे। अगर अब मेरी बहन के साथ मेरा खुदा ना करे झगड़ा हो गया, अब इसको वो बीमार हुई है, देखो अब जरूरत पड़ी, अब ये बोलने की जरूरत है नहीं, अब उसका काम करो, उसके दिल में अपनी मोहब्बत डालने का एक मौका खुदा ने दे दिया, ये समझो। तो क्या करना है, एहसान करके एहसास कराओ, बोल के एहसास नहीं कराएगी। कौन कहता है, मेरा मौला कह रहा है कि अगर किसी को एहसास कराना है कि उसने जो जुल्म किया वो गलत किया है, तो उस पर एहसान करो, माफ कर दो लेट को, ऐसा निगरानी खुदा अजर देगा। एक बात पकड़ पकड़ के दिल में हम भी हैरान हो रहे, परेशान हो रहे, टेंशन ले रहे, डिप्रेशन के शिकार हो रहे, नहीं माफ कर दो, बड़ा दिल रखो, हमारे इमामों की तरफ तवज्जो करो ने, कैसे जालिमों को, मरवान जैसे के बच्चों को चौथे इमाम ने अपने घर में संभाला है, बाकी हजार के वक्त कोई नहीं संभाल रहा था, इमाम ने संभाला। हम उस इमामों के मानने वाले हैं और दीन ऐसे फैला है। अजीजा निगरामी हसीन बिन नमीर को भी इमाम ने गल्ला दिया है, तब वो बोला है कि इमाम चौथे इमाम से कहने लगा, जब इमाम गल्ला लेकर जा रहे थे, इमाम ने गल्ला दिया, तो इमाम हकीकत में तो खिलाफत आप ही का हक है। अजीजा निगरामी एहसास करा दिया उसको। और हमारे ग्यारहवे इमाम ने कैसे दीन फैलाए, एक तो मैंने कहा कि जो और सिर्फ ऐसे नहीं, एक दो की बात नहीं है, बहुत सारे गुलाम जो तुर्की गुलाम थे जिनको यही पता नहीं था कि जो खिलाफत का दीन है वो सही है या जो इमामत के पास दीन है वो सही है, उनको अजीजों इतनी मारिफत करवाई कि वो अपने मुल्क में जाके वो लोग जा जाके अजीजा निगरामी तबलीग करने लगे और कहाँ कहाँ तक फैला है। मेरे पास पूरा लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान वगैरह जहाँ ये दीन फैला इमामत का, अजीजा निगरामी इश्ना शरी जो बारह इमाम के मानने वाले हुए, ये तुर्क गुलामों ने फैलाया इमाम के। इमाम का एक ही काम नहीं था अजीजो, तफसीर भी लिखते थे, मगर जैसे तफसीर लिखते थे अजीजो वक्त नमाज आता था तो खड़े हो जाते थे, मगर कलम इमाम के दिल की बातें लिखती रहती थी। और अजीजो ये कहाँ काम हुआ है, कैदखाने में जालिमों के बीच रहकर हम थोड़े पेट दुखते हैं मजलिस में आना छोड़ दिए, थोड़े से पेट दुखते हैं नमाज चली मैच या नमाज बैठ के पढ़ने लगे। अरे भाई टेक लगा के पढ़ सकते तो बैठ के मत पढ़ो, सब काम कर सकते हैं, नमाज ही बैठ के आपको पढ़ना है। ऐसा निगरानी हमारे इमाम ने कब नमाज बैठ के पढ़ी मालूम है? देखिए जनाबे सैयदा जख्मी थी ना, पसलियां टूटी थी ना, बिस्तर पे पड़ी थी, मगर जब नमाज का वक्त आता था तो दीवार को एक हाथ से दीवार पकड़ती थी, एक हाथ से अपने पहलू को पकड़ती थी, खड़े खड़े नमाज पढ़ती थी। नहीं अगर जनाबे जैनब ने नमाज शब बैठ के पढ़ी थी तो चौथे इमाम से बर्दाश्त नहीं हुआ था कि क्या हो गया मेरी पुत्री को, खाना इतना कम आता है, मैं बच्चों को बांट देता, ताकत नहीं कि खड़ी रहो, खाली वो नमाज नाफिल आती है वाजिब में। मगर ग्यारहवें इमाम को जो जहर दिया गया था ना, वो अजीजा निगरामी ऐसा जहर था, बहुत बार जहर दिया जो कोई खाने का हुकूमत की तरफ से आता था, उसमें जहर डाल के देते थे। पहली रबी लवल को जहर दिया और पहले बहुत बार जहर दे चुके मगर अब जहर बहुत ज्यादा खाती है, और पहली रबी लवल को जहर दिया तो 8 दिन तक मेरे इमाम बिस्तर पे तड़पे हैं। मौतमी ने अब घर भेज दिया था। मगर इन दिनों में जब भी नमाज का वक्त आता था तो इमाम ये शादी कसन बुलाना पड़े के इमाम जब भी नमाज का वक्त आता था खड़े हो जाते थे, वुजू करते थे, खड़े खड़े नमाज पढ़ते थे। मगर आखिरी 2 दिनों में इमाम के जिस्म में अंदर ये जहर इतना फैल गया था कि अब कुछ अंदर बाकी नहीं रहा था, और इतने कमजोर हो गए थे इमाम बैठ नहीं सकते थे, और फिर इतने कमजोर हो गए कि इमाम सोते सोते नमाज पढ़े, नमाज छोड़ा नहीं है जी, वो तो छोड़ने का सवाल ही नहीं आता है। मगर असीसा निगरानी इमाम अलैहिस्सलाम को इन दिनों में और क्या कारनामा अंजाम देना था, इमाम जमाना को पहचानवाना था। इमाम कितने, जब 11वें इमाम की शहादत हुई तो हमारे 12वें इमाम की उम्र कितनी थी? 4 साल 6 महीने 29 दिन थी तकरीबन। मगर एक तो मौतमी आपको मालूम है घर में दाइयां आती थी और पेट चेक करती थी और देखती थी कि अगर किसी के हमल है तो पेट काट के बच्चे को कत्ल कर डाले, इतना खराब जमाना। और इमाम जमाना की विलादत भी हुई और इमाम को सब लोगों की नजर से, यहाँ तक कि उनके चचा यानी हमारे 11वें इमाम के भाई जाफर कज्जा, उनको भी नहीं पता था कि मेरे भाई के वहां औलाद हुई है, यानी 11वें इमाम के वहां इतना छुपा के विरादत रखी गई। और एक तरफ कुछ लोगों को बुला बुला के बताया भी गया कि देखो ये मेरे बाद ये तुम्हारा इमाम है, और क्योंकि इमाम के पास कोई क्वेश्चन पूछने नहीं आ सकता था, इमाम लकड़ी के अंदर चिट्ठी डाल डाल के बाहर भेजते थे, और किस किस तरीके से लेटर पहुंचते थे। इमाम की जो वाइफ थे वो भी अजीजा निगरामी क्वेश्चन के आंसर ले लेके सबको पहुंचाते थे, उनके जो वकील थे खास करके उस्मान बिन सईद, उनके भी वकील यानी ऐसे जमाने में लोग खुद भी पहुंचाते थे और क्वेश्चन उनके जो होते थे वो भी पहुंचाते थे, एक सिलसिला रहता था। मिसाल के तौर पे अगर मैं इमाम से सबसे करीब हूँ तो मेरे पास जो क्वेश्चन आते थे मैं इमाम को पूछती थी, फिर इमाम मुझे जवाब दे, मैं इनको पहुंचाती थी, ये इनको किसने पूछा है वो उनको पहुंचाता था, उनको किसने पूछा उनको, यानी फिर भी इल्म फैलता रहा। और ऐसे माहौल में जबकि इमाम को 2 बार तो दरबार में बुलाते थे शायद शनिचर और बुध, तो इमाम रास्ते से निकलते थे तो किसी को सलाम करने की इजाजत नहीं थी, क्यों? इमाम खुद मना करते थे सलाम नहीं करना, अगर तुम सलाम करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं है, पॉसिबल है कि तुमको कैदखाने में डाले, पॉसिबल है तुमको कत्ल कर दे, क्योंकि तुम्हारे दिल में इमाम की मोहब्बत है। यानी कोई सलाम भी नहीं करता था और उनके तरफ अच्छे से नजर उठा के बस ऐसे आते थे लोग, इमाम के चाहने वाले रास्ते पे खड़े रहते थे, मालूम है इमाम निकलने वाले हैं, ऐसे देख लेते थे, इमाम से मुलाकात नहीं करते थे, इमाम को सलाम तक नहीं करते थे। ऐसा जमाना गुजरा है, आज तो फिर भी जमाना अच्छा है, हम आराम से अजादारी किए 2 महीने। बस अजीजा निगरानी अपनी मजलिस, ये मजलिस एक प्लेटफॉर्म है हमारा, और इस मजलिसों से हमारे अंदर तमाम मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। मेरी मजलिस तेरी मजलिस कुछ नहीं होता है भाई, इमाम हुसैन की मजलिस होती है, रसूल खुदा की मजलिस होती है, महफिल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह की हमद और सना होती है। ये मेरी तेरी मजलिस, मेरी मजलिस में ये होना चाहिए, तेरी मजलिस तूने करी ये। अगर कोई वो टाइम पे कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बाद में कर लेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं के। ये तो एक होने की जगह है, तफरीका डालने की जगह नहीं। अगर मैं कहूँगी मेरी मर्जी से तो क्या कबूल होगी, मैं कहूँगी रसूल इस्लाम का मिलाद है तो कबूल हो जाएगा भाई, रसूल का है तो अल्लाह कबूल करेगा और अजर भी देगा। इमाम हुसैन की मजलिस से तो अल्लाह कबूल करेगा अजर देगा, मगर मेरे को मेरी मजलिस से मैंने पढ़ी मेरे घर पे मेरे तो क्या है, मेरा क्या सवाब मिलेगा। हाँ मेरी मेरी करूँगी तो कुछ भी सर, हाँ मजलिस मजलिस मेरी तेरी होती नहीं, मजलिस तो रसूल इस्लाम की होती है, इमामों की होती है, उनके फजाइल के लिए होती है, हमारे फजाइल के लिए तो नहीं होती है, उनकी मारिफत हासिल करने के लिए हम मजलिस जाने। क्या मजलिस जलस मिलके बैठने को मजलिस कहते हैं, फिर वो किसी भी तस्कर हो किसी भी मान से हो, परवरदिगार आलम हम सब की तौफीकात में इजाफा करे। आवाज है बुलंद सलवार ने ग्रामीण। एक बात आपसे पूछिए, फिर हम मसाइब की तरफ जाएंगे। कौन हम लोग यहाँ पर जश्न रखने वाले हैं, यानी इधर जहरा का जश्न, तो आप कितने बजे तक आ सकते? देखिए हम लोग यहाँ से 6:37 को मगरिब होती है, तो हम उससे पहले तो घर पे चले जाएंगे, है ना, समझो 6:30 बजे आप लोग सब घर पे पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आप खाना पका के ने खाना खा के कितनी देर में आप खाना पका सकते हैं तुम? आधे घंटे में सब लोग थोड़ी बहुत तो तैयारी करके आए होंगे ना, और खाना बनाते कितनी देर लगती है? अब बनाते आधा घंटा तो खाते देर लगती है,
नौकरी से
तो एक अच्छा ऐसा नहीं कर सकते ना कि सीधा 7 बजे नमाज पढ़ के आ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। और आपको नमाज भी पढ़ना है, फिर आपको खाना पकाना है, फिर आपको खाना खाना है,
खिलाना है,
तो 8 बजे आ सकेंगे आप?
8:30 बजे नौकरी से भी
आते हैं तो मैं यहाँ रुक जाऊँ, मैं तो सब्जी भाई की रिक्शा में आई हूँ तो उनको रुका हूँ यहाँ पे,
तो आप जल्दी आओ तो ये रुक जावे, लेट करेंगे तो ना जाएंगे इसके लिए, तो आप सब आवे इसलिए कहते हैं, तो जल्दी सब आ जाएंगे 8:30 बजे तक आ जाएंगे सब।
ये तो हम लोग गिन लेते हैं टाइम, देखो देखो नमाज पढ़नी है आपको, खाना खाना पकाना है, खाना खाना है,
हमारे सब नौकरी वाले वो आ जाए उनको खिला देते हैं ना,
अपने काम करते अपने 8:30 रखते हैं, हम लोग चालू कर देंगे सबको, मुनाजात वगैरह चालू कर देंगे, जो जितना आ सको आते जाना।
जितना हो सके जल्दी आना,
जितना जल्दी हो सके आ जाना, अपने 8:30 का टाइम रखते हैं ना। सलवात
मोहम्मद,
अगर आप यहाँ मजलिस में नियत करके उठेंगे ना कि हमको 8:30 बजे पहले से आ जाने, क्योंकि जो कसीदे पढ़े जाएंगे वो भी बहुत बेहतरीन होंगे इंशाल्लाह, हम रसूल इस्लाम का भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उनके भी दिन चलेंगे अभी, क्योंकि जो इंशाल्लाह मौलाए कायनात का सबके पढ़ेंगे अपने, है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप लोग जितना हो सके आप नियत करके जाओ, अल्लाह आपके वक्त में कितनी बरकत, सलवात बहुत पढ़ना मोहम्मद और आले मोहम्मद, हम लोग तो फ्री बैठे होंगे तो आप लोगों के लिए दुआ करेंगे कि खुदा जल्दी जल्दी आपको आपका सब काम जल्दी जल्दी हो जाए इंशाल्लाह, बरकत दे दे खुदा। देखे कभी भी सलवात मोहम्मद और आले मोहम्मद से सलवात पढ़ने में कमी नहीं करना, सुस्ती नहीं करना। हमारे रसूल कहते हैं जन्नत में मेरे करीब सबसे वो होगा, सबसे करीब वो लोग होंगे जन्नत में कि जो सलवात बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे और जिसके अखलाक बहुत अच्छे होंगे। करना है कि अब इस मजलिस के बाद हमको ये कोशिश करना है कि इतना जो सीखे हम 2.25 महीने में अब अप्लाई करना है। भाई मदीना पहुंच गया काफिला तो खत्म हो गई जिहाद, नहीं अब जिहाद हमको करना है, अब हमको कोई जिहाद यानी कोशिश, अब हमको कोशिश करना है क्या ये दीन खुद हम भी अमल करें और दूसरों को भी बताएं। हमको अब कुछ अगर मैं कुछ भी ना बोलूं ना तो भी मेरे अखलाक को देख के सब सीखने चाहिए, ऐसे अखलाक बनाओ। कुछ बोलने की जरूरत, आपको बच्चों को भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद करते होंगे बच्चे ऑटोमेटिकली करने लगेंगे, समझे। अब हम ही गुस्सा कर रहे हैं, हम ही बदअखलाक किसे पेश आए तो हमारे बच्चे फिर ऐसा ही करेंगे, है ना। भगवत का आलम अभी मिसाल के तौर पर माँ बाप गालियां नहीं बोलते, दादा दादी नहीं बोलते, सब लोग अच्छे से प्यार से मिठास से नर्म दिली से काम करते हैं, अच्छे से रहते, तो बच्चे ऐसा ही सीख जाते हैं, ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, है ना। आलम हम सबको अच्छे अखलाक ही ना, जिसके अखलाक अच्छे हो गए वो रसूल इस्लाम से सबसे, मैं समझती हूँ इससे बड़ी सआदत क्या है कि हमें रसूल इस्लाम के करीब रहने मिले जन्नत में भी हमेशा के लिए। हम लोग इनाम लाए हैं मगर अब क्वेश्चन नहीं करती इस मजलिस से, इस मजलिस के क्वेश्चन हम रात को करेंगे तो अपने रात को इनाम देंगे, है ना इंशाल्लाह। तुम लोग आ जाएंगे ना तो हम लोग ये क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम करेंगे, फिर हम मैथिल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ग्रामीण मैंने आपको कहा ना 8 दिन इमाम सकते हैं, कितने दिन ये जहर के असर से। परवरदिगार आलम जल्द से जल्द वो दिन दिखाए कि इमाम जमाना के बेटे आ जाए। आपको मालूम है इमाम हसन अस्के साहब ने खुद तलब किया, क्योंकि छुपा के रखा जाता था, सरदाब में रखा जाता था कभी, और उस वक्त जनाबे नरजीत खातून भी नहीं थे। क्यों? जनाबे नरजीत खातून को मालूम था क्या क्या होने वाला है और किस तरह सताया जाता था, कि खुद जनाबे नरजीत खातून ने ख्वाहिश की थी कि इमाम मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे पहले दुनिया से चली जाऊँ। तो 11वें इमाम की वाइफ जो नरजीत खातून, जो हमारे जमाने के इमाम की बीवी है, हमारे जमाने के इमाम की माँ नरजीत खातून है, वो इस दुनिया से चल बसे थे। यानी अब 4 साल के और 6 महीने कुछ दिन के इमाम चाहते भी दिन है। अजीजा निगरामी इमाम इतने छोटे हैं और अब बाप का साया बिक रहा है। इमाम को बुलाया गया, पानी मांगा, ग्यारहवें इमाम ने आखिरी खिदमत कर रहे हमारे जमाने के इमाम अपने बाबा की। कभी खुदा छोटे छोटे बच्चों को यतीम न करे, हर एक को बाप की याद रहती है। अजीजों हमारी उम्र के लोग अगर बाबा चले जाते हैं तो एक तन्हाई महसूस करते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को कितना अजीजों, मगर बस अल्लाह की मकदर पर राजी बरसा रहना है। ये 4 साल के इमाम अपने बाबा की आखिरी खिदमत करे, पानी का जाम दिया अपने बाबा के हाथ में, मगर हाथ लग जा पानी गिर गया। यानी इतना जोर कैसे आ गया, क्यों ये हाथ कांप रहे हैं, अगर जहर नहीं दिया तो ये हालत न होती। अजीजा ने ग्रामीण आसार इमाम अमामत तालीम किया, कुछ बातें हुई, फिर 11वें इमाम ने खुद कहा बेटा अब चले जाओ। अब सोचे ऐसी हालत में 11वें इमाम के लिए कितना कठिन था कि अपने बेटे को कहे चले जाएं, और इमाम वक्त के लिए भी अब जमाने के इमाम के लिए कितना कठिन था कि अपने बाप को इस हालत में तड़पता हुआ छोड़ के चले जाए, मगर मसलहत यही थी इमाम चले गए। गुसल कफन दफन का कब्र का सारा इंतजाम उनके वकील उस्मान बिन सईद ने किया है, मगर अजीजा निगरामी जब नमाज जनाजा पढ़ाने का वक्त आया तो जाफर कज्जाब खड़े हैं, पीछे सारे लोग खड़े हैं। अब नमाज जनाजा इमाम की इमाम ही पढ़ा सकते हैं और जाफर कज्जाब आके खड़े हो गए हैं। इतने में देखा कि एक बच्चा आया, आने के बाद उनको हटाया और खुद नमाज जनाजा पढ़ाई और फिर वापिस गायब हो गए। अजीजा निगरामी उसके बाद मौतमी ने बहुत सिपाही भेजे, वो सब अलग दास्तान है, मगर अजीजो इमाम हसन अस्कर इस्लाम का जनाजा जितनी शान से उठा है किसी इमाम का इतनी शान से शायद नहीं उठा। अजीजो शामरा के तमाम दफ्तर, तमाम ऑफिस, तमाम स्कूल, अजीजो तमाम मदरसे, तमाम दुकान बंद है, सारे के सारे लोग इमाम के जनाजे में है। खुद मौतमी आता है जिसने जहर दिया, आने के बाद चेहरा उठाता है और कहता है देखो मैंने जहर नहीं दिया, और 200 लोगों को झूठी गवाही दिलवाई के देखो ये अपनी मौत से मरे हैं, जहर से नहीं मरे। खैर अजीजा निगरामी जिसने जो किया है वो वही पाएगा, हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे, मगर 11वें इमाम सिर्फ 28 साल की उम्र में दुनिया से चले। 28 साल क्या होते हैं बस जवानी में, मगर अजीजा निगरामी इमाम हसन असगर अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इमाम महदी के लिए क्या क्या किया है हम रात के जश्न में देखेंगे इंशाल्लाह। अजीजों इस छोटी सी उम्र में भी इमाम के कारनामे देखे, कि कहाँ कहाँ तक इस्लाम फैलाया है रफीका निगरानी। हमारा सलाम हो गया रवि मामा, फिर आपके जनाजे को आपका बेटा कांधा न दे सका। बड़े मजलूम है मामा, 27 साल की उम्र में आप चल बसे, आज हमारे लिए ये भी गम है अजीजो के गम के दिन खत्म हो गए। हम हुसैन को अलविदा नहीं कहते अजीजो, हम गम के दिनों को अलविदा कहते हैं। हुसैन तो हमारी जान है, हमारे खून में हुसैन दौड़ रहे हैं अजीजा निगरामी, हमारे दिल के धड़कनों में हुसैन है या हुसैन, हमारी दिल की धड़कने या हुसैन कहती है। अब वो दिन कहाँ, वो मुहर्रम, वो सफर, अब आते साल जो जिंदा रहेगा इन दिनों में अजीजो आजादारी करेगा। अगर खुदा नल है जिंदगी, हमारी रूहों को मोहलत दे देना, इजाजत देना मजलिस हुसैन में आ सके। बस आखिरी आखिरी मातम है अजीजो, आखिरी मजलिस है, दिल खोल कर हुसैन हम आपके रो नहीं सके। दिल खोल के मातम नहीं किया, दिल खत्म हो गए। ये काफिला मदीने जब आया है, मुनादी ने निदा दी है, और अजीजा निगरामी जनाब उम्मे कुलसूम ने एक मरसिया पढ़ा, ऐ नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना, जब हम गए तो हमारी गोदियां भरी हुई थी, अब खाली है, हमारी मांगे भरी हुई है, अब कोई सरपरस्त। अजीजो इस मकाम पर जनाब ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट से गिराया, घुटनों के बल चलती हुई रोजे रसूल पर पहुंची। रोजे रसूल पर इतना मातम हुआ है अजीजा निगरानी। एक मतबा बीबी ज़ैनब ने कहा, सैयदे सज्जाद इन बीबियों से कह दे कि मैं अपने नाना से कुछ बातें करना चाहती हूँ, थोड़ी देर के लिए हट जाए। एक मतबा एक कुर्ता निकाला, हुसैन अलैहिस्सलाम का लहू भरा कुर्ता, कब्रे रसूल पर रख कर कहा, नाना हर दफन से आने वाला कोई न कोई तोहफा जरूर लाता है, नाना तेरी नवासी भी तो लाई है, अपनी कुश्त दिखाई नाना, ये अजरे रिसालत में मिला है, ये अजरे रिसालत मिला है कि नाना मेरी कुश्त जख्मी हो गई। एक जुमला कहा, नाना नाना घंटों तेरी बेटी, घंटों तेरी नवासी दरबार में खड़ी रही, नाना जैन बहुत थक गई। लो अजीजा निगरामी, एक मतबा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहि वाले वसल्लम ने एक आवाज सुनी, देखा उम्मे सलमा अजीजा निगरामी उनके साथ एक बीबी आई है। उस बीबी ने तो जनाब ज़ैनब को नहीं पहचाना, मगर जब जनाब ज़ैनब ने उनको देखा तो पहचान करे, ये तो मेरी सुगरा। जैसे कलेजे से लगाया, फातिमा सुगरा को पता चला, अरे मेरी फूफी है, ये बाल सफेद हो गए हैं, तो कमर झुक गई है, शरीफा बन गई। एक मरतबा फातिमा सुगरा ने फरियाद के दफ्तर खोल दिया, अच्छी फूफी सकीना को लेकर गए, मुझे तन्हा छोड़ के चले गए। अरे मेरे चचा अब्बास कहाँ है, बाबा क्यों नहीं दिखाई देते। एक बीमार को अगर हमारे घर में या हमारे रिश्तेदार में किसी का अजीजा अजीजो इंतकाल हो जाता है और किसी बीमार को सुनानी सुनानी होती है, हम सोचते हैं बीमार को कैसे सुनाए। हाय बीमारे सुगरा को 72 के मरने की खबर सुनानी है, जनाबे ज़ैनब ने अपने दिल को पकड़ा, ऐ सुगरा चौथे इमाम के सिवा अली इब्न हुसैन के सिवा सब मारे गए, साजिद इमाम की साबिरा बेटी थी, सब देखे। एक मतबा गोदिया देखना शुरू की, कहा बेटा क्या चाहती हो। कहा अगर अकबर न रहे, अगर चचा न रहे, अगर बाबा नहीं तो असगर से दिल बहलाओ। अरे बाबा की बेगुनाही का सबूत देने के लिए असगर भी शहीद हो गए। अजीजो रो लो, सरो सीना पीट के रो लो, आखिरी मातम न जाने अब किसे जिंदगी के लिए। ऐ सैयद अकेला जब पता चला असगर भी शहीद हो गए, फातिमा सुग्रा साहब का सहारा लेकर एक एक की उंगली देखने लगी। अब जनाबे रबाब सोच रही है इस बच्ची को क्या किया जाए, सुग्रा क्या कर रही है, क्या ढूंढ रही है, कहा क्या एक एक उंगली में देख रही हो, कहा मेरी बहन सकीना अगर असगर नहीं मां तो मैं सकीना से दिल बहला लूंगी। अब पता चला सकीना क्यों कह दी थी मुझे घर जाना, वतन कब जाएंगे, अगर ये पंछी साफ हो गई आशियाने में जा रहे हो क्यों मां हम कब घर जाए। मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने किसी से सुना नहीं, मैंने किसी किताब में पढ़ा नहीं, मगर मेरा दिल कहता है बाबा तो शहीद हो गए कर्बला में, असगर कर्बला में, अबुल फजल अब्बास कर्बला में, अली अकबर कर्बला में, मगर सकीना हमेशा कहती थी हम घर कब जाएंगे। शायद फातिमा सुग्रा को छोड़ के आई थी, वादा करा किया था सकीना ने फातिमा सुग्रा से, बहन न घबराओ मैं चचा अब्बास खुद में लेने भेजूंगी, मगर कोई मौका ही नहीं। बहन तुम्हें याद करते करते सकीना ने शाम के कैद खाने को बताया, अभी तो रोजे रसूल में मातम हुआ, फिर अपने अपने घर को गए ना, मुझे आप बताए रबा जब अपने घर गई होगी तो हालत क्या हुई। हम घर जाते हमारे बच्चे सोकर, हाय रबा कभी साए में नहीं बेटी बीवी, खुदा किसी को ऐसा उजड़ा घर न दिखाए जैसा रबाब ने, खुदा हमारे घरों को रबाब के घर के सदके में आबाद रखे, रबाब की उजड़ी गोद के सदके में हर गोल आबाद रखे। बीबी जैनब अपने घर गई, जो बीबी उन्होंने मोहम्मद को ना अशूर को रोई, न शामे गरीबा में रोई, न 11 मुहर्रम को मकसद से गुजरे तो रोई, न सर आए शाम में तो रोई, मगर जब घर गई नन्दे नन्दे मुसल्ले नन्दे नन्दे बिस्तर बीबी को न मोहम्मद याद आ गए। जब माँ की कब्र पे गई है, माँ तुम्हें 72 का पुरसा, माँ हुसैन का पुरसा कबूल कर लो, माँ तुम्हें अपने बेटे अब्बास का पुरसा, माँ तुम्हें अपने जवान अली अकबर का पुरसा, माँ मोहम्मद का पुरसा, माँ कासिम का पुरसा, हर एक का पुरसा दिया। फिर कहा माँ तुम्हें 72 का पुरसा, मगर माँ मुझे कोई माँ कहने वाला दुनिया में। रोते रोते एक जुमला कहा, अब किसका इंतजार करके जीऊंगी, यीशु बीवी की तमाम तमन्नाएं खाकर। ला लानतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي يا ربي يا رب. ما شاء الله ما شاء الله هاتوا بلن كركي آباس Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے تیری آخری حجت بقیت اللہ امام زمانہ کے ذہن میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے عوان انصار تابع فرمان شیعہ سے بنا دے، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود کر کے ہم پر احسان فرما۔ کل مومن مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے پروردگار، تمام کی جان مال عزت ایمان اولاد کی دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سے عزاداری کا حق ادا نہیں ہو سکا، نہ ہم دل کھول کر رو سکے، نہ ہم نے دل کھول کے ماتم کیا۔ پروردگار جو بھی ہم نے قلیل عبادت کی ہے یہ عزاداری کی ہے اسے قبول فرمانے۔ تیری شان کے خلاف کچھ کہا گیا ہو، اہل بیت کی شان کے خلاف کوئی ضرورت ہو گئی ہو، پروردگار اسے بخش دے، ہماری عزاداریوں کو قبول فرما لے۔ ہم گنہ گاروں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنکھوں کو رومال زہرا میں جگائی نہ فرما، جن کی روزی تنگ انہیں کشادہ رکھتا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا۔ بار بار ہمیں ماہ محرم ماہ سفر پروردگار، بار بار ماہ محرم ماہ سفر ہمیں نصیب فرما، ہمارے مرحوموں کی مغفرت رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس گھر میں بیٹھ ہم نے مجلس کی ہے پروردگار اس گھر کو آنے والوں کو تمام کو ہمیشہ ہمیشہ شاد و آباد رکھ، تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد محبت بھائی چارے کی توفیق دے، ہم مسلمانوں کا اتنا وقار اور اتنی عزت بڑھا دے کہ دشمن اسلام دشمن مسلمان دشمن رسول دشمن قرآن کو نیست و نابود کر دے، ان کے دلوں میں روب بٹھا دے۔ پروردگار جو اسلام کی طرف آنکھ اونچی کر کے بھی دیکھے پروردگار تو اسے نیست و نابود کر دے، ہمیں اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری پوری قوم کو نمازی بنا دے پروردگار بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔